तो परमात्मा को तत्व से जाने वो है महात्मा। और उन महात्माओं के बीच के मां फिर कोई एक किस्म जो कि दुर्लभ महात्मा होता है, एक तो ऐसा महात्मा होता है कि अपनी आत्मा का तो उद्धार कर लिया किंतु दूसरे के उद्धार करने की उसकी सामर्थ्य नहीं। अरे एक ऐसा महात्मा होता है कि अपना ही नहीं और भी हजारों आदमियों का उद्धार अपने करने की शक्ति है यानी करता है, तो वो दुर्लभ महात्मा है। जैसे हमारे इस देश के बीच के माँ कीर्तिमान राजा हुए, पद्म पुराण के माँ कथा आती है कि एक समय की बात है कि धर्मराज जो है, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं, धर्मराज माने यमराज, यमराज ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर यह बात कही कि महाराज मेरा जो लोक है वो एकदम खाली हो गया। क्यों खाली हो गया? कि जितने जो एक प्रकार से नर्कगामी आए थे वे यंत्रणा भोग करके यानी अपने सजा भोग करके के आगे ने रोने हो गई, और नया कोई आया नहीं। कि कीर्तिमान नाम का राजा है और सारी पृथ्वी पर उसका राज है, वो चक्रवर्ती राजा है और सारी पृथ्वी के ऊपर पत्नी को इस प्रजोर को प्रचार कर रही हो कि कोई भी आदमी जब लोग बने आता सब भगवान के प्रणाम को जा रहे हैं। तो या तो एक प्रकार से थी मस्ती बोधिन आये हूँ ये आपको काम संभाल लू, नहीं तो मेरा काम चले मैं निकमो रहूं दिन भर कोई काम नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले अभी चलो भगवान विष्णु के पास, विष्णु भगवान के पास गए और जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि यमराज ऐसा आया है और कहता है कि हमारा जो यम का द्वार एकदम बंद हो गया, कोई भी एक प्रकार से थी यम के द्वार के वहां कोई मनुष्य जाता ही नहीं है, सबके सब आपके परम धाम में जा रहे हैं। और पहला जितने जो जम लोग में गए थे वह सजा भोग भोग करके और अपने ठिकाने लगे। तो यमराज कहता है कि मैं क्या करूं, या तो आपका काम संभालो नहीं कोई एक प्रकार से कोई रस्ता बढ़ाओ काम। तो भगवान ने ये उत्तर दिया कि भाई बात ठीक है, कीर्तिमान राजा बड़ा धर्मात्मा है और सारी संसार के बीच के मां उसने समझो कि ये आपने भक्ति की ढूंढी पिटवा दी, एक भी मनुष्य समझो कि यमराज के लोग को नहीं जाता, सबके सब भगवान के परम धाम को जा रहे हैं। ठीक है सब हमारे धाम में आ रहे हैं, किंतु अभी कीर्तिमान राजा जो है तो अभी रहेगा, हजारों वर्ष तो उसको हो गए और भविष्य में भी हजारों वर्ष रहेगा, सब मिलाकर शायद 10,000 वर्ष की अवधि बतलाई कि 10,000 वर्ष तक इसका राज है। तो 10,000 वर्ष के बीच के वहां ये राजा राज करेगा, तब तक एक भी मनुष्य यमलोक को नहीं जाए। 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद फिर कोई दूसरा राजा आएगा तो बोला यमराज अभी तुम्हारा काम चलेगा, इतने मोहित करो बैठे। हाँ तो समझो कि 8,000 वर्ष तो बीत गए थे, तब बेचारा तंग आ गया बिल्कुल, सब गया वहां। अब बोला कि 8,000 वर्ष तुमने सबूरी करी तो 2,000 वर्ष और करो। तो देखो हमारे देश के ऐसे ऐसे राजा हुए तो उनके राज के महाराज में कितना बड़ा चक्रवर्ती राजा, सारी पृथ्वी के ऊपर जिसका राज आज 3 अरब मनुष्य माने जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। अब 3 अरब मनुष्य एक प्रकार से मैं एक भी जम लोग ने नहीं जा तो कितनी आश्चर्य की बात है, सबके सभी भगवान के परम धाम में चले जावे और फिर दूसरे और 3 अरब आवे वे भी भगवान के परम धाम में जावे। इस प्रकार से 2-4% तो और ऐसा काम चलता ही रहेगा। भगवान ने ये जवाब दिया, आज को इसको विचार करके देखे तो लोगों को आश्चर्य मालूम देगा, कोई तो कह देगा नास्तिक आदमी तो बोलो गप है। अरे भाई गप क्या है, तुम पुराणों में देख लो, तो जब पद्म पुराण मंगा करके उसमें तुम पढ़ लो भैया, वो तो कोई हमारी बात बनी है ना। बोले पुराणों के बीच में ऐसा ही लिख दिया तो तुम्हारी इच्छा मत मानो, तुम्हारी मर्जी है मत मानो। तो ऐसे ऐसे संसार के बीच के मां कीर्तिमान जैसे राजा भाई, एक इसके विषय में कहानी भी है। एक जो है भगवान का भक्त था, भक्ति के प्रभाव से भगवान प्रकट हो गए, पर भगवान प्रकट होकर भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो सब तुम वरदान मांगो। उसने कहा कि प्रभु जब आपके दर्शन हो गए तो आपके दर्शनों से भी बढ़कर कोई वरदान है क्या? भगवान ने कहा कि ठीक है, हमारे संतोष के लिए तुम्हारे को मांगना ही होगा, और तुम्हारी इच्छा सो ही मांगू। बार बार उसको तंग किया गया तो बोले अभी ठीक है, मेरी इच्छा के अनुसार आप देना चाहते हो तो सब प्राणियों का सब जीवों का कल्याण कर, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने संसार के मां असंख्य प्राणी है बस अपना खाता दे रख। तो भगवान ने कहा कि बात तो ठीक है किंतु इन प्राणियों का जो पाप है उनका अपना गोकुण करा। बोला मैं करूंगा, आप करवाओ और हम करें, आप और हम दो आदमी रहेंगे और सबका सब उद्धार कर। तू मेरा भक्त है तो भगत को मैं सब दुनिया का पाप कैसे भुगता सकता हूँ, तो बोले सबको माफ कर। बोले ये भी असंभव बात है। बोले असंभव तो नहीं है, जब एक का उद्धार होता है तो हजार का हो सकता है, लाख का हो सकता है, सबका हो सकता है। और असंभव भी हो तो आप तो ईश्वर है, तो ईश्वर तो असंभव को भी संभव कर सकते। बोले ठीक है किंतु भैया सबका उद्धार तो नहीं हो सकता। नहीं हो सके तो फिर ये कहने की क्या आवश्यकता है कि तुम्हारी इच्छा उसको मांगो। फिर तो ये कहना था कि भाई मेरी तो इतनी सामर्थ्य है, समझा, तुम स्त्री मांग ले, पुत्र मांग ले, धन मांग ले, ज्यादा से ज्यादा तेरी मुक्ति मांग, बस इसके बाद कुछ नहीं। ये कहने की क्या आवश्यकता कि जो इच्छा उसको मांग। ये बात तो वही पुरुष कह सकता है कि जो सर्वशक्तिमान हो, सर्व सामर्थ्यवान हो। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं तब तो ऐसा चैलेंज क्यों दिया, और यदि दिया तो आपको करना चाहिए। भगवान ने कहा भक्त को भाई तुम जीते और हम हारे। बोले हम इसमें हमारी क्या जीत हुई, एक भी आदमी का उद्धार नहीं होया, झूठा है तो बापू से राजी कैसे, तुम जीते तुम जीते। ऐसी जीत आप भी अपने पास रखें, हमको ऐसी जीत नहीं चाहिए, हमको तो ऐसी बात चाहिए कि सबका उद्धार हो जाए। हमारा जो एक प्रकार से वरदान है तो वही है कि सबका कल्याण हो जाए। भगवान ने सोचा कि किससे पल्ला पड़ गया, यार भाई ठीक है मेरे दर्शन से भाषण से सफर से दूसरों का कल्याण होता है ना। बोले हाँ, अगर मेरा कोई नाम उच्चारण करे तो भी कल्याण हो जाता है, और मेरा कोई ध्यान करे तो भी कल्याण हो जाता है। तो मेरी जितनी शक्ति है इतनी शक्ति मैं तेरे को दे दूं कि तेरे भी दर्शन से भाषण से वार्तालाप से मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा, तेरा जो चिंतन करेगा उसका भी तेरा नाम लेगा उसका। और बोल एक प्रकार से तो उसने सोचा कि भाई जो कुछ दे रहे हैं इसको क्यों छोड़ो, फिर उसके बाद वो सोचेंगे ठीक है महाराज जो कुछ आपने दिया वही ठीक है। तो इस प्रकार से थी जो उनका भाव है बड़ा सराहनीय है, और इससे भी उत्तम भाव है कि दुनिया के बीच के वहां सबका उद्धार हो जावे, और सबका जो पाप है उसका जो दुख है वो सुख भोगने के लिए तैयार हो जावे। ऐसा जो पुरुष हो गए वो सबका उद्धार कर सकता है, ऐसी हिम्मत वाला पुरुष ही सबका उद्धार कर सकता है। तो अपने से मैं भी बने तो भाव तो उत्तम है, त्याग तो बड़ा उत्तम है। तो कितना बड़ा त्याग है, एक प्रकार से सारी दुनिया के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है। भगवान उसको कष्ट भुगताते नहीं है किंतु वो तो तैयार है। तो इस प्रकार से जिनका उदारता का भाव है, दया का भाव है, त्याग का भाव है, तो ऐसा बड़ा उत्कोटि का भाव है। ये बात याद क्यों आ गई कि आज स्वामी जी गए थे ये बात कर रहे कि बोले ये बड़ा अच्छा उद्देश्य है, ये उद्देश्य रखकर के काम किया जाए तो कहता वो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। संसार के बीच में एक भी आदमी ऐसा पैदा हो जावे तो सबका कल्याण हो जावे। आज तक भी ऐसा पुरुष कोई नहीं हुआ जो सबका कल्याण कर दे, क्योंकि ऐसा होता तो आज हम लोग यहाँ कहाँ से आते, तो उसके साथ हम लोगों का भी कल्याण हो जाता। तो इसे मालूम रहता है कि ऐसा स्थान जो है अभी खाली है, तो ऐसा स्थान खाली है माने ऐसा पुरुष संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि जो सबका उद्धार कर दे। तो वो जो स्थान खाली है उसकी पूर्ति एक प्रकार से ऐसा पुरुष कर सकता है कि जिसमें इतना त्याग हुए कि सारी दुनिया के दुख को खुद भोगने के लिए तैयार हुए और सबको एक प्रकार से खलास करना चाहे, इन सबको खलास कर दो, सबको मुक्ति दे दो और सबका दंड मुझको भुगता दो। तो ये बड़ी हिम्मत की बात। नारायण नारायण नारायण। और भी याद आ गई कि एक जो है सो बड़े विद्वान और ईश्वर के भक्त और बड़े त्यागी अपने पंडित थे और जाति के ब्राह्मण और विद्वान और उनका नाम था जयदेव कवि। राजा के जैसे उनके शिष्य थे। एक समय समझो कि राजा के दरबार में गए तो राजा ने बड़ा भारी आदर किया, सत्कार किया और शेष के बीच के वहां समझो कछु रत्न जो है पंडित जी को सोची। पंडित जी ने इनकार कर दिया कि नहीं मैं रत्नों का क्या करूं, किंतु राजा ने जबरदस्ती उसे के दुपट्टे के यानी चादर के पल्ले में बांध दिया। विरोध करते करते बांध दी। अब क्या उपाय करें, बांध दिए तो बांध दी। अब पंडित जी घर के ऊपर जाने लगे, समझो कि राजसभा के बीच के मां बहुत आदमी रहते हैं तो कितने जो डाकू है उनका पीछा किया। पंडित जी का घर वहां से कुछ दूर पर था, 5-4 कोस दूर पर था शहर से, तो उनके पीछे पीछे कई डाकू तो गई चोर और डाकू। जब पंडित जी 3 कोस के ऊपर अंदाज गए तो जाकर पंडित जी को पकड़ा, तो पकड़ करके वो छीन लिया, जो रतन जो थे छीन लिए। अब छीन करके तलवार से उनके हाथ काटने लगे। अब बोले तुमको ज्ञान से मारे। पंडित जी ने कहा कि भैया मुझको ज्ञान से क्यों मार, ये धन तुम ले जाओ, तुमको तो रुपये ही चाहिए ना धन ही। बोले नहीं, आपको बिना मारे ये धन हमारे हजम नहीं होगा, इसलिए ज्ञान से मारे। उन्होंने बहुत कहा कि भाई मैं किसी को नहीं कहूंगा, तुम उसको मारो मत, किंतु साहब एक ही नहीं सुनी तो उनके दोनों हाथ काट डाले। और पास में एक कुआ था सूखा जिसमें जल नहीं था, तो फिर उठा करके उस कुएं में पटक दिया। बोले अपने अपने समझो की मर जाएगा। अरे चोरे सो धन लेकर के भाग। राजा जो है हवा कोरी के वास्ते निकला था तो उसको बड़ी प्यास लगी थी। प्यास लगी तो देखा रहे कोई जंगल में कोई कुआ है खोजो, तो वो ही कुआ था वहां। तो उस कुएं के ऊपर राजा साहब आए और समझो कि कुएं के वहां लोटा है तो सारा। तो भीतर से पंडित जी ने कहा कि महाराज कौन है, इस कुएं में जल नहीं है सूखा है। तो पंडित जी की बोली पहचान ली। बोले पंडित जी महाराज। बोले हाँ। बोले कुएं में आप क्यों बैठे। बोले अभी ऐसा ही है, अब रहेगा पानी पीना तो भूल गया। अरे कोशिश करी। बोले पहला पंडित जी को निकालो। पंडित जी को निकाला, देखे तो हाथ कटे हुए। बड़ा राजा को दुखा, रहे बाप रे बाप, महाराज आप किसने आपका हाथ काटा, आप नाम बताओ उसको अभी आपने फांसी दे देता हूँ। बोले इसीलिए तो नहीं बताता। राजा ने बहुत कुछ कहा, प्रणाम किया, पंडित जी ने नाम बताया नहीं। पंडित जी जानते भी थे फिर तो नाम नहीं बताया। पंडित जी को राजा अपने लाए एक मकान में रखा और खुद उनकी सेवा करने लगे, इलाज कराने लगे। इससे कितने दिन बीत गए, वही चोर जो पंडित जी के हाथ काटे थे साधु का भेद था, चारों चोर चार साधु महात्मा बड़े झूठे महात्मा। और साधु का भेद धारण करके वहां आए जहां जयदेव कवि का समझो कि दस लोग इलाज कर रहे। वहां नारायण हरि जाकर के आवाज लगाई, राजा साहब भी वहां बैठे। पंडित जी की नजर वहां पड़ी, यहाँ ये वही चोर है। तो राजा से कहा कि राजा साहब ये जो साधु जो आए हैं ना, ये हमारे बड़े भारी मित्र है, आपको जो कुछ हमारे को धन देना हो तो इनको दे दो आप, इनको बुलाओ जल्दी बुलाओ। तो राजा दौड़े चोरों ने देखा कि भाई अब राजा दौड़ करा रहे हैं, गैल सिपाही दौड़ करा रहे हैं, भाजने से तो गैल नहीं छूटेगी, अब जो कुछ होगा सो होगा। अब पंडित से तुमको, तुम लोगों को पहचान लिया, ये मरिया नहीं भाग जोग से, मर जाता तो काम खत्म होता, अब जीता रह गया, अब एक प्रकार से समझो सजा होगी। क्या सो बेचारे सहम गए। राजा साहब ने कहा कि तुम डरो मत पंडित जी, तुम्हारे को इनाम दिलवाएंगे। उनके हृदय का मां अपना पाप है वो काम जाएगा, इनाम तुम हमारे को फांसी होगी, इनाम मिलेगा तो तुम जानते। बोला चलो पंडित जी के पास ले आए, ला करके बैठा दिए। क्यों पंडित जी महाराज, क्या हुक्म? बोले ये हुक्म है कि ये हमारे परम मित्र है, इसलिए इनकी जितनी आप सेवा कर सको करो, जितना इनको धन चाहे वो धन इसको दो। तो उनसे पूछा चोरों से, बोलो तुमको कितना धन चाहे? बोले आपकी मर्जी उसको दे दो। बोलो तुम बोलो। तो चार आदमी थे, पंडित जी ने कहा कि इनको क्या पूछो, 16 सुवर्ण का भार, 16 हाथियां पर जितनो सोनो लदे उतनो सोनो साथ में फौज भेजकर के इनके घरे पहुंचवा दी। तो राजा बोले बहुत अच्छी बात है, उसी वक्त तो कम हो गया और पुलिस साथ में हो गई और 16 हाथी सो सोने से लादे चलने लगे। रास्ते में जो दरोगा जो है पुलिस साहब है उसको पूछ लिया, क्यों जी आप लोगों ने जयदेव कवि का सा कौन सा उपकार किया था जो आपको इतना धन दिलाया? बोले हम लोगों ने जो उपकार किया उसका वो बदला चुका ही नहीं सकता, उनको हमने प्राण दान दिया, उसकी जान बचाई। जब इतना शब्द गया तो भूमि फट गई, और भूमि फटने के साथ ही उतनी भूमि फटी कि जहां वे चारों आदमी खड़े थे, और चारों के चारों आदमी उसके मांसों धस गए, और ऊपर से भूमि समाप्त होगी और चूर्ण होकर के वे चारों के चारों मर गए। अब चारों के चारों मर गए। अब एक प्रकार से वह सैनिक आदमी और पुलिस साहब और दरोगा बोले अब इसे धन को कहां पहुंचा हूं? बोले चलो वापिस ले। राजा के पास में वापिस जाए। बोले महाराज ये गति हुई। तो राजा ने कहा कि पंडित जी से पूछो। पंडित जी से आगे कहा कि महाराज ये गति हुई। तो पंडित जी रोने लगे, रोने लगे। तो राजा आश्वासन देने लगे कि महाराज आप तो हमारे को रोज समझाते हो कोई घर में मर जाता है, तो आपके परम मित्र थे किंतु वे तो चले गए, वापिस आ नहीं सकते, उनके रोने से अब क्या फायदा है हमारा? तो पंडित जी को हंसी आ गई, हंसी आ गई और आंसुओं को पूछने लगी तो हाथ भी आ गई। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मामला है? और पंडित जी ने कहा कि भाई वे चले गए मर गए तो कोई बात नहीं, वो धन है सो पाचा खजाने में दाखिल करो। तो धन को खजाने में दाखिल कर दिया। राजा पूछ लेंगे पंडित जी से, महाराज बात क्या है, सारा किस्सा तो बतलाओ, हम समझे नहीं। तो सर्व से आंख तक सारा किस्सा पंडित जी ने बतला दिया। बोले महाराज ऐसे चोर बदमाश थे और उनको आप इतना धन दिलाया, समझ में नहीं आता। बोले समझ में नहीं आता उसका मतलब यह है कि ये धन के वास्ते मनुष्यों की हत्या करते हैं, इनको काफी धन मिल जाए तो फिर क्यों हत्या करेंगे, इसलिए इनको धन दिलाया। तो आपने इनको अपने सो मित्र क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि मैं आपके पास रत्न ले आया ना, तो वो मैंने बड़ा भारी पाप किया, उस पाप का ये प्रायश्चित कर दिया कि हमारे हाथ काट डाले, तो इसलिए हमारे मित्र हुए, इन्होंने हमारे को शिक्षा दी, तो बड़ा हमारा उपकार किया, तो भविष्य के बीच में हम रत्न को कभी छुएंगे भी नहीं, तो कितनी बड़ी शिक्षा मिली हमारे को, बड़ा उपकार किया हमारा, और हमारा हाथ काट कर फिर कुएं में डाल दिया। तो एक प्रकार से काफी सजा हमारे को, जो आपसे दान लिया उस दान का दंड हमारे को। तो फिर आपको हम कुएं से निकाला तो आप नाम क्यों नहीं बदलाया? बोले इसलिए नहीं बदलाया कि आप उसको मार डालोगे, फांसी चढ़ा दोगे, तो उसको फांसी चढ़ने से हमारे को क्या लाभ होगा, हमारे हाथ से कुछ वापिस आवेंगे नहीं, तो इसलिए हमने ये नाम नहीं बदलाए, ठीक है। फिर धन आपने दिलाया, अरे वे एक प्रकार से थी, फिर मर क्यों गए? पर हमारा ये बात है, एक प्रकार से थी, समझो कि उनका प्राण। तो फिर आप उसके लिए रोए क्यों? बोले मैं इसलिए रोया कि मैं क्यों तो आपसे रुपया ये धन लेता, अरे क्यों ये चोर मेरा पीछा करते, अरे क्यों मुझको सजा देते, अरे क्यों बेचारे मारे जाते। तो मैंने ये सोचा कि तेरे अपराध के कारण चार आदमी की मृत्यु हुई, इसलिए मैं रोया कि हे प्रभु मेरा बड़ा कसूर हुआ, बड़ी मेरी भारी गलती, अपराध हो गया मेरा, जो मेरे को निमित्त बना करके चार आदमी की मृत्यु हुई, इनको आप सजा दी, इसलिए मैं सो रोया। तो फिर हंसे क्यों? बोले हंसा इसलिए कि आपने वास्तव में हमारे मित्र समझे, वास्तव के बीच के हमारे हितेश ही समझे, इसलिए मैं हंसा। मैं तो भाव से थी अपने इनको मित्र बनाया, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए? आप रोने लगे, आंसू पूछने के बाद से हाथ बढ़ाए तो हाथ कैसे आ गए? बोले तो ईश्वर की कृपा से आ गए, भगवान की कृपा से। तो जो आदमी इस प्रकार से उदार चित होता है, तो समझो कि एक प्रकार से उसके कटे हुए हाथ भी आ जाते और उसको सजा देने का काम नहीं पड़ता, और अपने उनको सजा हो जाती है, तो भी वो अच्छा जो पूरे उदार चित वाला बर्दाश्त नहीं करता कि उनको सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये उदारता की बात है। तो ये जयदेव जो कवि हैं, ये बड़े उच्चकोटि के भक्त थे, भगवान के बड़े उच्चकोटि के भक्त थे। तो उनकी जो स्त्री है वो पतिव्रता थी, उसकी कहानी इस प्रकार से, कहानी उसका नाम है जो एक प्रकार से थी लोकोक्ति है, लोक में जो अपने चली आती, और कथा उसका नाम है जो आर्ष ग्रंथों में जिसका प्रमाण हो। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के बीच के मां जो कथा ऋषि प्रणीत तो है वो कथा है, और ये सब कहानी है जो समझो कि जो शास्त्र की बात नहीं, प्रमाणित नहीं, लौकिक प्रमाणित है, लोग ऐसा मानते हैं चली आती है। तो उसकी स्त्री की बात यह है कि एक दिन की बात है, वो राजा के महल में, राजा के महल को रावड़ा कहते हैं, जहाँ स्त्रियां रहा करती, तो वो स्त्रियों के पास बैठी थी। जैसे राजा साहब पंडित जी का सत्कार मान और प्रतिष्ठा करते थे, इसी प्रकार से राजा की जो रानी है वो पंडितानी की इस प्रकार से सेवा पूजा और सत्कार किया करती थी। दैयोग से थी, रानी का भाई मर गया, और भाई के मरने से उसे की जो बुझाई है, रानी की बुझाई यानी उसकी स्त्री, भाई की स्त्री, वो जो उसके घर सती हो गई, अपने प्राणों का समर्पण कर दिया, उसके घर वो सती हो गई। सती हो गई तो महल के बीच के माँ सबने पश्चाताप किया कि देखो हमारा भाई मर गया, उसके बाद से सब कोई रोए, और रानी ने उसकी प्रशंसा की अपने बुझाई की, जब वह सती हो गई। और रानी की प्रशंसा करने पर और रावले में जितनी स्त्रियां थी वो भी प्रशंसा करने लगी, बड़ी क्या करना, आज के समय में भी पतिव्रता स्त्री है, देखो समझो कि रानी साहब की जो भाभी जो है, बुझाई जो है, वो कितने उस कोटि की पतिव्रता है जो उन्होंने अपने प्राणों को पति के साथ भेजे। ये सुनकर के सब कोई प्रशंसा करने लगे, किंतु जयदेव कवि के से चुप रहे, न निंदा की न प्रशंसा। तब रानी साहब ने कहा कि पंडितानी जी क्या बात है, मेरी भाभी की सब कोई प्रशंसा करते और प्रशंसा के लायक, और आप मौन हो, इसका क्या कारण? बोलो कि वो यदि पतिव्रता होती तो विधवा क्यों होती? पतिव्रता कभी विधवा होती है? पतिव्रता स्त्री जब अपने पति को ही नहीं बचा सकती है तो उसका पति पर धर्म क्या काम आएगा? फिर यदि अपने पति के प्राणों की रक्षा ही नहीं कर सकती, तो ये बात उस रानी के दिल में चुभ गई। बोले देखूंगी देखा तू कैसी पति भरता है। उस वक्त में रानी कुछ भी नहीं बोली, उसके मन में ये बात आई इसकी पंडितानी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन आपने एक प्रधान कनिष्ठ बल को यानी प्रधान सिपाही को बुला करके कहा कि देखो मैं ऐसा खटियंत्र रचती हूँ कि राजा साहब के साथ पंडित जी को मैं भेजती हूँ और राजा साहब जब सिंह की शिकार जाएंगे तो साथ में पंडित जी भी जाएंगे। उस समय में तुम झूठ आकर कह देना कि पंडित जी मर गए, ठीक है। अब राजा साहब को बुला करके कहा कि महाराज एक मेरी प्रार्थना है, क्या कि आप सिंह की शिकार जाते हो ना समय समय पर, तो अब की बार सिंह की शिकार जाओ तो पंडित जी को भी साथ में ले जाओ। बोलो ठीक है। राजा साहब ने पंडित जी से कहा जा दो कभी से कि मैं बड़े बड़े सिंहों को मारता हूँ और आप भी देखो किस तरह से मैं मारता हूँ। तो पंडित जी ने कहा इस बात को हमको क्या देखना है, अरे तो राजाओं का काम है। बोले नहीं एक दिन तो हमारे साथ में आप चलो। तो हाथी के होदे के ऊपर उसको बैठा लिया राजा साहब भी बैठ गए और राजा सिंह की शिकार जो है घोर जंगल के बाद चले गए बहुत सा इंतजाम करके। वही सिखाया हुआ जो सिपाही है उसने आखिर की झूठी खबर दी महल के बीच के माँ बड़ा जुलम हो गया, बड़ा जुलम हो गया। क्या हुआ? बोले मैं क्या करूँ, आज राजा साहब पंडित जी को साथ में ले गए थे जंगल के वहां सिंह की शिकार के लिए और वहां एक बड़ा भारी नौत था केसरी सिंह आया, तो वो एक प्रकार से उछल करके राजा के होते पर जा पहुंचा तो पंडित जी को तो चूर चूर कर दिया और राजा जी महाराज बच गए, पंडित जी तो खत्म हो गए। अब ये सुन करके रानी है सो पंडित रानी से हम आज बहुत ही खराब घटना हो गई। बोले क्या? बोले मेरे से तो कहा नहीं जाता है, इस सिपाही से पूछ लो। सिपाही से पूछा क्या बात है भैया? सिपाही ने कहा कि दैयोग से आज पंडित जी सो राजा जी के साथ में चले गए और राजा साहब एक सिंह की शिकार गए थे और सिंह बड़ा भारी पहलवान लौटता था, समझो कि एक दो पूछ करके राजा के हाथी के होते पर जा पहुंचा तो पंडित जी को तो मैं क्या कहूँ कि चूर चूर कर दिया और राजा तो बता। ये सुनने के साथ ही पंडित जाने के प्राण चले गए, पंडित रानी के प्राण चले गए तो रानी रोने लगी। बोले बड़ा जुलूम हो गया, मैं तो मजाक करे विनोद करे और ये तो बात सबके मां मरी गई, अब क्या उपाय करना चाहिए। अब समझो कि राजा साहब और पंडित जी फिर लौट कर वापिस आए शाम को घर पर, अब घर के ऊपर सब रो रहे हैं। राजा ने कहा कौन मर गया? तो पंडित रानी ने रानी साहब ने कहा पंडित रानी जी मर गए। कैसे? बोले मेरा कसूर हुआ, बड़ा भारी अपराध हो गया, एक ब्राह्मणी की हत्या हो गई ऐसा ऐसा। राजा ने कहा कि मुर्गा क्या इस प्रकार की कोई हंसी या कोई मजाक क्या करते हैं? बोले महाराज मैं तो परीक्षा लेती थी, उसको ये क्या मालूम कि ये मरी जाएगी, तो अब क्या करना चाहिए। बोले पंडित जी को तो खबर देनी पड़ेगी। पंडित जी के पास राजा गए, चरणों में गिर गए कि मेरी स्त्री का बड़ा भारी अपराध हो गया तो उसको आप क्षमा करेंगे और क्या करें। तो क्या हुआ? तो वो सारी हकीकत बतला दी आदि से अंत, और ये हकीकत है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी स्त्री कहाँ पर है? तो लाकर दिखला दिया कि ये आपकी स्त्री। स्त्री को देख करके पंडित जी ने जो पति पत्नी का जो दाम्पत्य प्रेम हुआ है उस प्रकार का एक समझो कि छंदों से रथ के ग्रंथ की रचना कर दी और वो सुनाया उसको। उसके सुनाने से थी उसने वापिस जान आ गई। वो जो स्त्री है वो अपने वहां गई और लोग को वह पति मिले नहीं, अरे यहां पति की आवाज आई। तो पति की आवाज आने के साथ ही एक प्रकार से उसके वहां प्राण आ गई। तो ये दिखलाया गया कि देखो